मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग अपनी कल्पना के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कल्पना की सच्चाइयों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके लिए दार्शनिक शब्दावली का मैंने प्रयोग किया है, माया। और जिस विषय को उदाहरण के रूप में चुना है वह है प्रेम का अनुभव। मैंने आप सबको पहले बताया था कि इस विषय को मैं इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं यह विषय हम सबके अनुभव जगत में शामिल है, और साथ ही साथ यह वह क्षेत्र होता है जिसमें हम अपनी कल्पनाओं का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि यही वह क्षेत्र सबसे बड़ा है, या यूं कह लीजिए कि गिनती में सबसे अधिक है, कि हमें फिर अपने यथार्थ में वापस लौटना ही पड़ता है। और अगर हम यथार्थ में नहीं लौट पाते तो पूरी जिंदगी भर के लिए कहीं न कहीं एक तकलीफ, एक दर्द, एक टीस, एक पीड़ा को झेल रहे होते हैं। इसी विषय को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। फ्राइडे को मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि बीच के जो दो दिन के गैप हैं, प्लीज़ आप सब इस विषय पर विचार करने की कोशिश करें, अपने अपने ढंग से अपने अपने निष्कर्ष निकालें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से कई ने ऐसा किया भी होगा, और फिलहाल या आज ये मान करके चलिए कि इस विषय का हमारा अब यह अंतिम दिन है, क्योंकि आप लोगों ने भी डेफिनेटली अपने अपने कुछ न कुछ निष्कर्ष तो निकाल ही लिए होंगे। दोस्तों, आज बस मैं केवल एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जिसे आप अंग्रेजी में कह सकते हैं कम बैक, यानी कि वापस आना, लौटना, यानी कि कल्पना की दुनिया से लौटकर यथार्थ की दुनिया में पैर रखना। बस हम इस पर थोड़ी सी बातें करेंगे। हमारे दार्शनिकों ने जो माया है इसे समझाने के लिए मृग तृष्णा का उदाहरण लिया है, खूब इसका प्रयोग किया गया है। मृग तृष्णा यानी कि हिरण की प्यास। तो हिरण की प्यास क्या है? गर्मी के दिनों में आप सबने अनुभव किया होगा कि जो पक्की सड़कें होती हैं दोपहर में वो झिलमिलाने लगती हैं, और उनकी झिलमिलाहट को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि वहां कोई तालाब बह रहा हो, नदी बह रही हो या पानी बह रहा हो, हमें लगता है। तो हिरण क्या समझता है कि प्यासा रहता है, और उस मरीचिका को देख करके उसे लगता है कि अरे ये तो पानी है। वह उसे पीने के लिए जाता है लेकिन वहां पानी नहीं मिलता। फिर उसे आगे उसी तरह की मरीचिका दिखाई देती है, फिर वहां पीने के लिए जाता है लेकिन वहां पानी नहीं मिलता, क्योंकि वहां पानी था ही नहीं। उसने इस मरीचिका को पानी समझ लिया था, और नतीजा क्या होता है कि वह जो मृग है हमेशा हमेशा के लिए प्यासा रह जाता है, या यूं कह लीजिए कि हो सकता है कि प्यास के कारण मौत भी उसकी हो जाती हो। इसे मृग तृष्णा कहा गया है, और इसके जरिए ही हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि जो संसार है ये माया है, हम इसके चक्कर में रहते हैं, भटकते रहते हैं जैसे हिरण भटकता रहता है, और फिर अंत में हम इस दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों, केवल इसी को समझाने की कोशिश की गई है। इसे मैं थोड़े से दूसरे रूप में देखता हूं, और वह मेरा रूप यह है दोस्तों कि जो मरीचिका है वह अपने आप में झूठ नहीं है, वह बनी है, उसका अस्तित्व है। विज्ञान में उसका फार्मूला मौजूद है कि इस मरीचिका का निर्माण कैसे होता है। वो रिफ्लेक्शन है, प्रकाश का प्रत्यावर्तन है, उससे उस मरीचिका का निर्माण हुआ है। तो झूठ क्या है? झूठ मृग है। मृग अपने आप में झूठ नहीं है, यूं कह लीजिए कि मृग की जो समझ है वह झूठ है। वह मरीचिका को पानी की झील समझ रहा है, पानी का स्रोत समझ रहा है, तालाब समझ रहा है। तो मरीचिका सच है, यानी कि ये जो दुनिया है ये सच है, जो प्रेम है वह सच है। तो झूठ क्या है? जो हमने कल्पना के जरिए उसका स्वरूप बदल दिया है वह झूठ है, लेकिन हम उस झूठ का आनंद लेते हैं वह अपने आप में सच है, क्योंकि आनंद मिलता है वह सच है। तो फिर गड़बड़ कहां होती है? गड़बड़ केवल यह है फ्रेंड्स कि जब वह कल्पना समाप्त होती है, या कह लीजिए कि मृग को यह पता लग जाए कि नहीं, ये मरीचिका है, यह झील नहीं है, तब भी वह इस बात को मानने को तैयार न हो कि यह झील नहीं है। वह कह रहा है कि नहीं, ये झील ही है, झील ही है, मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने देखा है, ये पानी जैसा है, ये पानी ही है। परेशानी केवल वहां होती है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो कल्पना की दुनिया रची थी उसका जो अस्तित्व था वो केवल हमारे दिमाग में था, हमारी कल्पना में था। अब वो कल्पना समाप्त हो गई तो क्या उसके साथ ही हमारी वो रची हुई दुनिया भी नष्ट नहीं हो जानी चाहिए? नष्ट हो जानी चाहिए, लेकिन होता यह है कि वह वैसे तो नष्ट हो जाती है लेकिन स्मृतियों में हम उसे जी रहे होते हैं और उसका शोक मना रहे होते हैं, उसके नष्ट होने का शोक मना रहे होते हैं, और ये शोक हमारे जीवन में पीड़ा का भाव हो पैदा करता है। देखिए, रचा हमने था, उसे हमने बनाया था, उसके आर्किटेक्चर हम ही थे, अपने हिसाब से हमने बनाया था, उसकी एक एक चीज हमने गढ़ी थी, तो हम ही उसके बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। तो फिर अब हम इस बात को क्यों नहीं जानने की कोशिश करते या स्वीकार कर पाते कि भैया हमारा गढ़ा हुआ वह भवन, वह दुनिया खत्म हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, और वह अपने आप में झूठ था, लेकिन उसका जो आनंद लेना चाहिए था वो हमने ले लिया, बात खत्म हो गई, आओ अब कुछ नया गढ़ते हैं, कुछ नया बनाते हैं, क्योंकि उसका अंत थोड़ी होता है। उस एक पर्टिकुलर कल्पना का अंत हो गया है लेकिन कल्पनाओं का अंत नहीं हुआ है, उसकी बहुत सी गुंजाइश है। तो हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर जाएं और जीवन में फिर से एक नवीनता का एहसास करें, एक नई यात्रा की शुरुआत करें। दोस्तों, जो इस बात को समझ लेते हैं, मान करके चलिए कि फिर वो अपने जीवन में दुखी नहीं होते, वो उसे स्वीकार करते हैं, खुले मन से स्वीकार करते हैं, और ये नहीं कि कोई जबरदस्ती स्वीकार कर रहे हैं, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उसे स्वीकार करते हैं। और मुझे लगता है कि जब हमारे अंदर इस तरह का स्वीकार्य भाव आ जाता है तो यही भक्ति है, और कभी कभी तो मुझे ये भी लगता है कि यही समाधि भी है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही, अपनी बात अब समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।